कुछ मसाइल जो इस आयत में से हमारी ज़रूरत के हैं वो आपके सामने रखूंगी, फिर हम आगे चलेंगे। हम इस वक्त एक बड़ा अहम मौजू कर रहे हैं, जिना के सदेबाब के रास्ते में, जो बहुत बड़ी एक रुकावट बन सकता है, कि जिसके अंदर औरतों का अपनी जीनत को गैर मुनासिब जगह पर इस्तेमाल करना है। सूरत नूर के अंदर जो आयात आई हैं, इनकी खूबी क्या है कि यहाँ अमूमन हमारे इर्द गिर्द रहने वाले गैर महरमों की बात की गई। हमने एक लंबी लिस्ट देखी, इसी तरह की एक लिस्ट हम लोगों ने सूरत निसा के अंदर चौथे पारे के आखिर में भी देखी थी कि हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम से लेके आगे तक। देखने की बात यह है कि वहाँ अल्लाह ताला ने औरतों की बात की थी कि किन किन औरतों के साथ निकाह हराम है और उनके साथ तुम्हारे ताल्लुकात कैसे होने चाहिए। यहाँ पे मर्दों की एक लिस्ट है कि कौन कौन से मर्द हैं जिनके सामने औरत मुख्तलिफ हदूद में रहते हुए अपनी ज़ेब व ज़ीनत का इजहार कर सकती है। अगर आप अमली तौर पे देखें तो अमूमन लोग सूरत निसा वाली आयत पे तो बड़े शौक से अमल करते हुए दिखते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमानों में आज भी इस दौर में जहाँ के बहुत सारे फितने हैं, कोई कम ही माँ बहनों के साथ निकाह या बेपर्दगी और फूफी के साथ शादी और भांजी और भतीजी के साथ अपने मामले को गलत करता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर हम इस आयत को देखें जो कि इस वक्त हमारा मौजू है, कि अल्लाह ताला ने बाप से लेके बेटे, भाई, भतीजों और इस तरह के वो रिश्ते जिनके बारे में यकीनी बात भी नहीं कि हर एक के पास हों, क्योंकि हर एक के भांजे नहीं होते, हर एक के भतीजे नहीं होते, या हर एक के मामले में ये सारे लोग नहीं आते, लेकिन खोल खोल के बात बयान कर दी। इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इन आयात को मिस अंडरस्टूड करने की कोशिश करते हैं। हमारे कल्चर में एक बहुत ही मारूफ चीज़ है, और वो जिसको हम ख़ानदानी निज़ाम कहते हैं। थोड़ी सी बात करूंगी घर के अंदर रहने वाले गैर महरमों की हदूद और कयूद के बारे में, जिसमें अमूमन शादी के बाद शौहर के भाई, जिसको देवर कहते हैं या जेठ कहते हैं अरबी ज़ुबान में, ससुराल की तरफ से हर रिश्ता, जैसे भाई है या उसकी बीवी बहन का मियाँ जिसको हमारे यहाँ गालिबन नंदोई कहते हैं, या कुछ इन सब को अलहम कहते हैं, हा मीम वो, कुछ लोग इसको हमू पढ़ते हैं, हमू ठीक लफ्ज़ नहीं है, वाव के ऊपर ज़बर होती है। अब हमारे यहाँ जहाँ सोशल यानी कल्चर बन चुका है, जिसको हम ख़ानदानी ज़िंदगी कहते हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम, तो उसके बारे में थोड़ी सी वजाहत की ज़रूरत है, इसलिए कि बहुत सारे लोग ऐसे बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं। इस बारे में भी दो मुख्तलिफ इंतहाएँ पाई जाती हैं हमारे कल्चर में। एक तो ये है कि पर्दे का नाम लेकर किसी को पास फटकने ना दो, घर के बाहर चार बाड़े बनाई हों, उससे पीछे फिर उससे पीछे, और शौहर घर में ना हो या शौहर की गैर मौजूदगी या इवन शौहर की मौजूदगी में भी औरतों को बिल्कुल इस तरह से कॉन्शियस कर दिया जाता है कि आपके लिए जैसे एक बिजली का तार है, इसी तरह शौहर के रिश्तेदार भी हैं। और दूसरी तरफ इंतहा क्या है कि देवर भाभी की गोद में बैठा हुआ दिखता है शादी की रात, है ना बेगैरती की बात, कि एक गैर महरम जो उसके अमूमन देखे गए कि देवर जो होते हैं वो भाई से कोई 2-4 साल ही छोटे होते हैं अमूमन, और उसको लाके शादी के दिन दुल्हन के कमरे में उसके घुटने पे बिठा दिया जाए और पैसे दिए जाएंगे और उठेगा, कि एक तरफ हमारे माशरे में हम देखते हैं कि बहनोइयों के जूते छुपाते हुए और उनकी टांगे बांधते हुए भी लोग देखे गए हैं। तो ये कल्चर जो है ये इस्लाम का कल्चर नहीं है। इस्लाम ने हमें शुरू से ये बात बता दी कि घर जो होता है वो इंसान के प्राइवेट मैटर के लिए होता है, वहाँ वो इत्मीनान और सुकून से रहे, उसको हर लम्हे ये धड़का ना लगा रहे कि कोई आ ना जाए, कोई आ ना जाए। अब आप ले लीजिए इसको, एक माँ है जिसने चार बेटों को पाला, दो बेटियाँ चार बेटे, कोई भी ले ले मिसाल। अब एक माँ जब बच्चे को पालती है तो उसको उससे मोहब्बत भी है, वो भाई जो हैं उनको, बहनों को भी उससे मोहब्बत है, लेकिन यूँ ही एक भाई की शादी होती है या एक बेटे की शादी माँ कर देती है तो उसके बाद थोड़े ही दिन के बाद फिर हालात बदलने लगते हैं। बाज़ दफ़ा सास और बहू की झगड़े के नाम पे, बाज़ दफ़ा नंद और भाभी के मसले पे, और बाज़ दफ़ा देवर और भाभी के मसले पे। आप देखिए कि अंदर जो बीच में नुक्ता बनता है वो एक ही शख्स होता है, एक मर्द जो किसी का शौहर बन चुके हैं, अब उसको बीवी को भी खुश करना है। दूसरी तरफ वो माँ का बेटा है जिसने उसको 25-30 साल से पाला हुआ है, पेट में रखा है। दूसरी तरफ उसकी कुछ बहनें भी हैं जिन्होंने हो सकता है पिछले 15-20 साल से उसके लाड देखे, उसके कपड़े इस्त्री किए, और इसी तरह वो भाई भी हैं जो शादी से सिर्फ एक दिन पहले तक बिला तकल्लुफ भाई के कमरे में आते, बैठते, खाते, पीते, सोते थे। अब वो मर्द पिसता है। अमूमन हम देखें कि सबसे ज़्यादा जॉइंट फैमिली सिस्टम में जो मज़लूम होता है वो एक लड़का होता है जिसकी शादी होती है, क्योंकि उसको एक ही वक्त में सबको खुश करना होता है। बहू तो नहीं आई है, उसको तो किसी से क्या लगे, इज्जत है तो इज्जत है, ठीक है। जो खून के रिश्ते होते हैं मोहब्बत, वो अलग होती है, जो ससुराल के हैं वो अलग होती है। अब इसके बाद होता क्या कि चंद ही महीनों के बाद वो शौक पूरा हो जाता है, वो सास के भी लाड ख़त्म हुए और जो उसने चांद सा चेहरा देखा था उसी में कितने दाग दिखने लगते हैं। और भाभियों को ढूंढने के लिए नंदों ने जो जूते खिसाए होते हैं, फिर उनको अफसोस होता है कि इतनी तलाश है बस यार के बावजूद भी कोई अच्छी औरत हमारे घर नहीं आई। तो एक अजीब व गरीब किस्म का हमारे ख़ानदानी सिस्टम में जंगी सिस्टम बन जाता है। इस्लाम इसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत तरीका देता है। पहली बात यह है कि एक मर्द जब भी शादी करेगा, हमारे पास सिस्टम नहीं है, ये ऐसी है कि किसी के पास खाना पकाना उसको है और उसको तरकीब बता दी जाए कि ये बेस्ट है, लेकिन वो यूटेंसिल्स नहीं है जिससे वो खाना पका सके। तो बिल्कुल इसी तरह आज हमारे माशरे में सिस्टम तो नहीं है, फिर उसके मुताबिक जैसे भी इंसान एडजस्ट करना चाहे वो करे, लेकिन जो आइडियल सिचुएशन है वो यही है कि एक लड़का जब शादी करे, बल्कि शादी तो बाद की बात है, एक माँ जब एक बच्चे को पालती है, बेटे को पालती है, उसको उस वक्त ही रियलिस्टिकली इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि आज ये बेटा मेरा अकेला बेटा है, आज मेरी नज़रें इसमें हैं, ये आते हुए भी मुझे सलाम करेगा, जाते हुए भी करेगा, इसको मेरी हर चीज़ को देखना है। लेकिन जो ही शादी होगी तो इसकी ज़िंदगी में अब एक और औरत आने वाली है जिसका हक देना, जिसको खुश रखना इसकी ज़िम्मेदारी है। तरबियत के अंदर ये चीज़ बिल्कुल होनी चाहिए। बच्चे और बच्चियों की तरबियत में हम लोग बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ करते हैं, लड़की को बाज़ लड़का बना के पालते हैं, लड़के को लड़की। बुनियादी तौर पे वाज़े औसाफ़ हैं जो बचपन से अगर लड़कों में पैदा कर दिए जाएं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई हंगामी सूरत नहीं पेश आएगी शादी के फ़ौरन बाद। और इसी तरह लड़कियां ससुराल में जाके हर वक्त माँ को ही नहीं याद करती रहेंगी। तो यहाँ चूंकि हम लड़के की बात करें, लड़के को इस चीज़ का बिल्कुल पूरी तरह से एहसास होना चाहिए कि मेरी क्या ज़िम्मेदारी है, क्या हदूद और कयूद हैं, माँ के हकूक़ क्या हैं, आने वाली बीवी के क्या हैं, और मुझे किस तरीके से अपने आप को एडजस्ट करना है। फिर अगर हम बेटों को अखलाकी तौर पे बुलंद करें, ना वो किसी की गिबत करें, ना सुने, ना किसी को ताना दें, ना इल्ज़ाम दें, ना झूठ बोलें। बाज़ दफ़ा कुछ लोग कहते हैं कि शादी के बाद खुश रहने का एक ही तरीका है कि नीचे से माँ की बातें सुनो और आके बीवी को सुना दो। ये जहालत की बातें हैं, इस्लाम इसको बिल्कुल पसंद नहीं करता। इस्लाम कहता है कि आइडियल सिचुएशन तो ये कि एक मर्द जब शादी करे, चाहे एक कमरे का घर है उसके पास, कोई घर के अंदर ही एक प्राइवेट रूम हो या अलग अफोर्ड कर सके, ये चीज़ उस लड़के के लिए आने वाले बहुत सारे फितनों का दरवाज़ा बंद कर देगी। अब मसला क्या होता है कि हमारे यहाँ जब एक ही घर के अंदर दो तीन भाई और उन भाइयों की बीवियाँ और उनके बच्चे, के बाद दफ़ा देखा गया कि देवर जेठ तो एक दूर की बात है, जेठों के बच्चे भी जवान हो चुके होते हैं। यानी मिसाल है कि एक नई लड़की जो कुरान सीख चुकी, जिसने सूरत नूर पढ़ ली, जिसने अब देख लिया कि पाबंदियाँ हैं मेरे ऊपर कुछ ना कुछ, तो वो जब एक ऐसे माहौल में जाती है कि जहाँ चार जेठ भी हैं, फिर जेठों के बच्चे हैं, फिर नंदोई सुबह शाम आ रहे हैं, उसके लिए बाज़ दफ़ा उसको टैकल करना मुश्किल होता है। तो आसन और पसंदीदा सूरत तो क्या है कि शादी के बाद चाहे एक साथ रहते हुए, एक ही गली में चार घर हैं, एक ही घर में चार कमरे हैं, चार छोटे छोटे पोर्शंस हैं, साथ रहा जाए, सब एक मोहब्बत के साथ रहे और बीवी की प्राइवेसी बाकी रहे। इसी तरह मर्द की भी प्राइवेसी होती है। लेकिन याद रखें कि अगर जाने वाली लड़की के दिल में मोहब्बत है और वो वाकई एक पैकरे मोहब्बत बन के जाती है, तो मैं पूरे शऊर से कह सकती हूँ कि वो कटने वाली नहीं होगी, उसको भाई बहुत याद आएंगे। देखिए शादियाँ होती हैं ना तो अपने भाई बड़े याद आते हैं, और जो अच्छी बहनें होती हैं वो भाइयों के लिए खाने पकाती हैं, हर वक्त पे उसको ख्याल आएगा कि हाय मैं अपने भाई के लिए खाना पकाती थी। अगर उसको उस घर में देवर जेठ नाम के कोई मर्द दिखते हैं ना, वो अपना सारा भाइयों का प्यार अपने देवरों को दे देगी। ये मैं अपने दिल से कह रही हूँ आपको, आपके दिल में मोहब्बत है, अगर आप पूरे शऊर से मोहब्बत से इज्जत के साथ पूरे अपने जज्बात को काबू में रखते हुए, शरई पाबंदियों में रहते हुए पूरे यकीन से किसी को मोहब्बत का एहसास दिला सकते हैं। मैं कभी नहीं मान सकती कि इस्लाम किसी के जज्बात के रास्ते में रुकावट है। देवर गैर है, बिल्कुल गैर है, लेकिन आप उससे मोहब्बत करती हैं, या आप अपने शोहर का भाई समझती हैं, या आप उसको अपना छोटा भाई समझती हैं, आप उसको पूरे शऊर से इसका एहसास दिला सकती हैं। खिदमत जीतती है, आप बनाएं अच्छा सा खाना। बार दफ़ा घरों में बिल्कुल लड़के होते हैं, 12-13 साल का देवर होता है, जो नाबालिग है ना नाबालिग है, कुछ पाबंदी के साथ, कुछ फ़र्क के साथ आप उससे मोहब्बत कर सकती हैं, उसको एहसास दिला सकती हैं। एक मर्द है वो बड़ा है, आपको लगता है कि आपका उसके सामना सामना नहीं हो सकता, इस तरह नहीं। आप अच्छे तरीके से खाना पका के कुछ ना कुछ जब अपने शौहर के लिए बनाए, साथ ही अलग प्लेट में दो तीन थोड़ी थोड़ी चीजें रख ले, और सास को कह दे, नन को कह दे, ये मैंने फुला फुला भाई के लिए बनाया। कोई इस्लाम नहीं आपको इससे मना करता, ना आपकी इससे पर्दा खत्म हो जाता है। होता क्या है कि जब हम अपने दीन को एक रुकावट बन के और मुंह में आने वाला कंकर बन के लोगों के लिए जाते हैं ना, तो फिर वो भाभी वाकई नुक्ता बनती है। फिर सासे कहती हैं, हाँ जी ये तो आई जब से घर की मोहब्बत खत्म हो गई, और इसने तो आके मुसीबतें डाल दी, और दीवारें कायम करो और पर्दे लगाओ और ये करो। आप पूरी शरई पाबंदियों के साथ अपने हालात के मुताबिक अपने दीन को कायम रख सकते हैं। आइडियल सिचुएशंस चाहिए अगर आपको पूरी, तो फिर पहले पूरी सोसाइटी को आइडियल करना पड़ेगा, जो बेस्ट है। आज भी अरब कल्चर में आपको ये चीज़ें मिलेंगी कि वो अरब कल्चर में आप देखिए कि लड़का पूरा घर सजाता है फिर लड़की को लेके जाता है। इस्लाम में शादी के बाद घर, उसकी खर्चा, जो भी उसकी कुर्सी मेज है, अगर कोई घर के चार बर्तन है, ये मर्द की जिम्मेदारी है। हमारे अमूमन मासियाँ एक जज्बाती जुमला बोल के कितनी दफ़ा पैसे ले जाती हैं अपनी मालकिनों से कि जी बेटी की शादी करनी है। सुना मैंने, फलां की बेटी पे हम ज़कात लगा दें, फलां को बेटी को जहेज में ये दे दें, सोना दे दें। मैं सोचती हूँ क्यों लोग ये नहीं पूछते कि फलां के बेटे की शादी है, क्या हम उस पर कुछ खर्च करें? और अगर आप इस्लाम की सोच देखें तो इस्लाम में बेटे की शादी पे देना चाहिए, क्योंकि ये मर्द की जिम्मेदारी है। वो बड़ी बेगैरत मर्द हैं जो ससुराल से आए बेड और उस पर सोएं। ये मर्द की मर्दानगी को चोट पड़ती है इससे। क्या वो भूखे नंगे हैं कि ससुराल से ही बर्तन आएंगे तो उसमें खाना बीवी पकाएगी? इस्लाम ने तो औरत को एक इज्जत दी थी, पूरा राज करे, औरत जाएगी, मर्द उससे पहले तैयार बैठा है, उसके लिए घर अपना सजा के बैठा है, इज्जत का इस्तेमाल है। आप सोचें कभी ऐसा हुआ कि आप किसी को बुलाएं घर में, क्या आप आइए, प्लीज जरूर आइए, हम बड़े मुश्ताक हैं आपके आने के लिए, लेकिन आते हुए पतीलियां और डोंगे साथ ले आइएगा, और देखिए एक कुर्सी भी अपने बैठने के लिए ले आइएगा, और साथ बेहतर है हमारी तरफ से भी एक आ जाए, दो ही ले आइएगा, और आप देखें कि प्लीज हमारे पास बिस्तर कोई नहीं है, एक कंबल भी ले आइएगा। कैसा लगेगा? फौरन सोचिए क्या लगेगा। आज जहेज के नाम पे जो कल्चर हम लोगों को देते हैं, क्या वो यही नहीं है कि लड़की लेके, और फिर सास भी एक इंस्पेक्टर की तरह एक एक चमचा गिनती है कि बड़े चमचे नहीं दिए तो छोटे नहीं दिए, बड़े पतीले नहीं दिए तो छोटे नहीं दिए, ऊपर के बिस्तर दिए हैं नीचे के नहीं दिए। क्यों, आपको कोई गलती लग गई शादी की जगह, आपने कोई डील की थी, कोई कारोबार किया था? हम जब अपनी बेटियों को जहेज की फहरिस्तों के अंदर लपेट के देते हैं ना, याद रखे उन बेटियों की इज्जत नहीं होती, उनको पता लग जाता है कि ये हमारी जैसे हैं। हम जब आधा दीन देते हैं और आधा लेते हैं ना, तो उसकी वजह से हम वो हाल में हो जाते हैं कि जो एक गाड़ी इस लाइन में जाने के बजाय दो लेन के बीच में चलता है। आपको पता है कि कितना बड़ा जुर्म हो जाता है ना, जो दो लेन के बीच में, एक आने वाली और एक जाने वाली है, या आप इधर हो या इधर हो, हम जब बीच में चलते हैं ना, इधर से भी ठुकेंगे इधर से भी ठुकेंगे, दो तरफ से एक्सीडेंट का डर है। हम लोगों का अमूमन हाल ये होता है, हम एक तरफ तो चाहते हैं कि हमारा दीन, हमारा पर्दा, हमारा सब सही रहे, और दूसरी तरफ हम दूसरी चीज़ों को नहीं लेते। औरत को जो अल्लाह ताला ने खूबियां दी केयरिंग होने की, वो सारी हों, ये तो एक अलग मौजू है, लेकिन इस वक्त चूंकि हम फैमिली सिस्टम पे बात कर रहे हैं, तो घर के अंदर रहते हुए किस तरीके से औरतों को अपनी इज्जतों को करना होता है। आप देखिए कि इस्लाम कभी भी किसी चीज़ को हवा नहीं बनाता। मसलन आप देखिए, दो चार मुकाम मैं आपके सामने रखती हूँ जो घर से बाहर के हैं, जहाँ मुमकिन ही नहीं कि आप मर्दों से अपना इख्तलात रोकें। मसलन आप हज या उमरे पे गए हैं, तवाफ में आपके इर्द गिर्द मर्द होते हैं? होते हैं ना। और अमूमन आप देखिए कि आप एयरपोर्ट्स पे जब जाते हैं, मर्द आपके पास होते हैं? जब भी मुझे शौरी तौर पे एहसास होता है, छोटे जहाज होते हैं, इवन आप अपने शौहर के साथ बैठे हैं, लेकिन बिल्कुल एक बीच में पार्टीशन और उसके पीछे मर्द होता है, बाद दफ़ा इधर मर्द होता है, सम टाइम आपको आइल सीट मिलती है, आपके बिल्कुल इधर मर्द होता है, बच ही नहीं सकते आप। बाज़ दफ़ा आपको हॉस्पिटल्स में, डॉक्टर्स में, यानी आप सोचिए कि कुछ जगह ऐसी होती हैं कि वहाँ हम चुप रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम इतने ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं कि बाज़ दफ़ा वो लोग जो हम दीन पे आना भी चाहते हैं, वो हमारे इन रवैयों से कट जाते हैं। पूरी कोशिश करें, लेकिन खुदा के लिए अपने पर्दे को लोगों के लिए मसला न बनाएं। पीछे जो आगे आ गया, भाभी भाभी भाई आ गया, पीछे पीछे हो सकता है उसके हाथ में कोई चीज़ और वो गिर जाए नीचे। ये दीन जो होता है ना, खुदा की कसम ये लोगों को दीन से दूर करने वाला दीन होता है। जो रूह समझ आती है ना दीन की, वो ये है कि दीन सताने के लिए नहीं है। पहले आप माहौल को समझ के उसके हिसाब से करें। आप कहते हैं कि आइडियल यही है कि लड़की अपने घर में अलग रहे, मर्द अपने घर में रहे, इसको भी थोड़ा देखते हैं। वाकई इस्लाम में आइडियल यही है कि लड़का अलग रहे। आप ज़रा इसको एक एंगल पे लाइए। एक लड़का माँ बाप का अकेला ही बेटा है, मोस्टली चार बहनें हैं पाँच हैं या कोई भी नहीं, सबकी शादी हो गया, बूढ़ी माँ और बूढ़ा बाप है, या बूढ़ी माँ है या खाली बाप है, कभी ऐसे भी तो हालात होते हैं। अब क्या आप वही असूल इस पे भी लगाएंगे कि आप, चूंकि आपको इस्लाम ने कहा है कि शादी के लिए मर्द को लाजमी है कि वो अपना घर लेके बैठे, अब तुम्हारी बूढ़ी माँ होगी, मेरी तो नहीं है, तो तुम इसको रखो। वो कहेगा अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम, तुम्हें मैं एक अलग घर में ले देता हूँ और रख देता हूँ, और माँ को एक अलग ले देता हूँ, फिर मुझे इजाज़त दे दो कि कुछ वक्त माँ के साथ गुजारूँ, कुछ वक्त बीवी के साथ गुजार लूँ। इस पे भी फिर मसले उठते हैं। तो इंसानी रिश्तों में फतवे से ज़्यादा तकवा चलता है। कभी भी इन बातों में किसी मुफ्ती साहब को तंग ना करें। हुक्म क्या है? औरतें कहती हैं ज़रा बताएं जी सास के कहाँ तक जिम्मेदारियाँ। यानी लिटरली मुझसे वो लड़कियाँ जो शायद 5 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ती होंगी, कभी उन्होंने सुन लिया ना कहीं किसी दर्स में ये जुमला कि जी सास की तो खिदमत कोई लाजमी नहीं है, तो वो आके पूछती हैं ज़रा ये बताएं कि सास की खिदमत करना फ़र्ज़ है? तो मैं उस वक्त कहती हूँ नहीं, लड़के को माँ की करना फ़र्ज़ है। आप अपने शोहर को तो इजाज़त दें, फिर आप नहीं बर्तन धोंगी तो वो धो देगा। जो दीन नेबर्स के साथ चलने को अच्छा हुक्म दे, जो जानवरों के साथ अच्छा मामला करे, मुहसिनात बनने का हुक्म दे, क्या वो घर में आते ही सिर्फ इस बेस पे कि वो औरत एक सास है, अब मेरे शोहर को उसने पैदा किया पाला, इस वजह से अब मैं तो इसकी कुछ भी ना करूं क्योंकि इस्लाम में है ही नहीं है, तो नो प्रॉब्लम, होगा क्या? तिल कल या मुनुदा बिलुहा बेनन्नास, ये तो दिन है, हम लोगों में फेरते हैं, जो करेगा वो कल भरेगा। क्या हम दूसरे लोगों पर एहसान कर सकते हैं तो अपने घर वालों पे एहसान नहीं कर सकते? और ये जुमला मैं अक्सर बोलती हूँ, यकीन करिए मेरे दिल की आवाज़ है, कि सास के साथ मोहब्बत करने की कोई और वजह आपको समझ ना आए ना, वो लड़ाकी है, वो ताने देती है, वो डांटती है, वो कुछ भी करती है, बुरी से बुरी सास का तसव्वुर जहन में ले आए, इतनी बुरी है, लेकिन उस औरत से मोहब्बत करने की एक वजह काफ़ी है कि वो मेरे शौहर की माँ है, जिसकी गाड़ी की चाबी मेरे हाथ में है, जिसके बैंक की की मेरे पास है, जिसकी चेकबुक पे मेरे साइन चलते हैं, जो मेरी छत है, जो मेरे बच्चों का बाप है। बताइए क्या करेंगे आप? क्या उस औरत को ज़िंदगी से हम निकाल देंगे? और इसी को अपोजिट भी ले लीजिए, आपकी बहू इंतहाई नामाकूल अहमक है, गोया कि आपका इंतहाब गलत था, आपको बिल्कुल पहचान नहीं, दूर से आपको चांद दिखी थी, आज कुछ नहीं निकली वो, कल तक तो वो लगता था सारी दुनिया से अच्छा, चांद का किंगरा मिल गई, वो सारी बुराइयों वाली है, लेकिन सास बहू से सिर्फ इस बुनियाद पे मोहब्बत कर सकती है कि ये है वो औरत जो मेरे बेटे को जिना से बचाती है, ये है वो औरत जिसकी कोख में मेरी नस्ल पलनी है। बताएं जब आप इस लेवल पे लाके रिश्तों को लेके आएंगे, होंगे झगड़े? अल्लाह ताला ने साफ बता दिया, इस्लाम कोई खानदान तोड़ नहीं है दीन, एक साथ रह के हमारी नानियाँ दादियाँ एक एक घरों में, आपको पता है कि पूरी पूरे फैमिली ही रहती थी, वो यूँ बड़ी बड़ी हवेलियाँ होती थी, आज भी उनके घर आप देखें। हाँ, इज्जत अंदर, पर्दा कोई कपड़े का नाम नहीं, हम पीछे भी बात कर चुके हैं, ये एक सिस्टम है, बाज़ औरतें पर्दे के बावजूद भी बेपर्दे होती हैं, और बाज़ भोले भाले वो लोग थे और बिल्कुल सीधी साधी बातें थी, एक घर में रहते थे, कभी वो खराबियाँ सुनी नहीं थी जो आज हमें दिखती हैं। तो लिहाजा घर के अंदर की लिमिटेशन आप खुद तय करेंगे, अपने शौहर को अगर आप इस तरीके से माइल करते हैं, आप देखिए कि आज तो एक मसला दिखता है ना, कल बहुत सारे दिखेंगे। आज तो सिर्फ आप इस बात पे फेस नहीं कर सकते ना, मैं नहीं रह सकती भाई, मुझसे नहीं बर्दाश्त होती ये बात, नो प्रॉब्लम, उठी बस हम इस कमरे में हैं, चले मैं आपको एग्जाम्पल देती, हम कहते हैं मैं ये जगह तंग लगती है, हमारे पास बैठने को कम है, ये वो वट एवर सो ऑन, जो भी कह लें, बस हम निकलते हैं, जो भी होगा देखेंगे, हम यहाँ से जाते हैं कोई 4 गुना बड़ी जगह ले लेते हैं, ले लेते हैं, अल्लाह दे भी देगा इंशाल्लाह, लेकिन क्या जो यहाँ छोटे मसले थे वहाँ जाके 4 गुना बड़े ना हो जाएंगे? यहाँ तो आपको एक बारी लगाते हैं, आप 15-20 मिनट में सफाई करके चले जाते हैं, और इससे 4 गुना बड़ी जगह पे अगर आपकी ड्यूटी लगेगी तो आपको 1 घंटा लगाना पड़ेगा ना। याद रखिए कि जो अपने मौजूदा हालात से सेटिस्फाइड नहीं है, वो अपने हालात के बेहतर होने पर भी सेटिस्फाइड नहीं होगा। लिमिट रखें, आपको अल्लाह ताला ने एक लिस्ट दी, आप देख लीजिए कि ये जो लिस्ट है इसके अंदर ना देवरों का जिक्र है, ना जेठों का जिक्र है, ना नंदोइयों का जिक्र है, खाला खालू और फूफा फूफी की बात हम पीछे कर चुके सूरत निसा में, उनको वक्ती महरम कहते हैं, ये अबदी महरम है, कभी भी नहीं ख़त्म होते, इनके साथ आप सारी ज़िंदगी, आपका मामला एक जैसा है, लेकिन सहर से ससुराल से जो रिश्ते होते हैं उसमें कभी बदल जाते हैं। खालू जो है मिसाल है कि आपका महरम है, खाला और भांजी ये घर में इकट्ठी नहीं जा सकती, खुदा ना खास्ता कल खाला बीच से निकल जाए, मर जाती हैं या तलाक होती है, वही मर्द आपका शौहर बन सकता है, और ऐसी मिसालें मौजूद हैं घरों में, फूफा है, यही कहानी है, उनको वक्ती महरम कह सकते हैं। हमारे यहाँ इस मसले में भी बहुत लंबी बात की जाती है कि अच्छा फिर इनसे फिर किस हद तक रुके, और ये घर में रहते हुए हम कैसे पर्दा करें और कैसे रुके। देखिए कि अगर आप बचना चाहेंगे ना तो अल्लाह बचाएगा, मत आमने सामने बैठिए, तन्हाई में ना बैठें। हुक्म है हदीस में, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कोई भी औरत जो है वो दूसरे मर्द के साथ तन्हा ना हो जब तक के बीच में उनकी महरम औरत ना हो। मसलन आप देखिए कि आप घर में हैं, मैं मिसाल देती हूँ इसी बात को लेके, प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं, घर और होटल में फ़र्क होता है, ठीक है ना? आप घर में सबके साथ रहती हैं, क्या मुमकिन नहीं है कि घर में कभी ऐसा वक्त आए कि देवर भी अपने कमरे में मौजूद है, भाभी भी है, क्या करेंगे आप? दोनों में से कोई एक निकल के बाहर खड़ा हो जाए, आप मुझे बताइए, ऐसे पॉसिबल है? और क्या इससे इस्लाम आ जाएगा आपके अंदर? मतलब आपने नमाज ही नहीं पढ़ी हुई, आप नमाज नहीं वक्त पे पढ़ती, या आपका कोई और आदत है, लेकिन इसके बावजूद इस छोटे से इशू को, छोटा इशू नहीं है ये, वल्लाह ही बहुत बड़ा इशू है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब औरत और मर्द इकट्ठे होते हैं तो सालिसा हुमा शैतान, तीसरा उनके अंदर शैतान है। मुराद क्या है कि वो गलत बात की तरफ ले जाएगा, वो माइल करेगा, वो गलत ख्याल डालेगा, सोच डालेगा। और आप देख सकते हैं कि ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ें मौजूद भी होती हैं, लेकिन क्या आम शरीफ सीधे साधे घरों में ऐसा पॉसिबल है? क्या देवर इतने गंदे हैं कि वो मौके की ताड़ में है कि एक दफ़ा भाभी अकेली मिले फिर पकड़ते हैं इसको? नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, पॉसिबल है ये? क्या लड़कियां इतनी थोड़ी हुई हैं कि जू ही उनको देवर या जेठ अकेला मिला तो वो उसके साथ जाएंगी? उस वक्त आपका अपना कमरा, आपका घर है, लिमिट्स में रहिए। खुल्लम खुल्ला जो इख्तलात है वो दुरुस्त नहीं, हाथों पे हाथ मार के बातें करना, और एक वक्त क्या आ गया कि भाई तो निकल के बीच में और देवर भाभी का इतना ताल्लुक बन गया कि वो रात को भी उनके पास बैठे हैं। इसी तरह आप देखिए कि अगर एक और भी चीज़ इसमें आप ऐड कर सकते हैं कि घरों में आने वाले मर्द, क्या वो मर्द नहीं होते? कुछ लोगों का हाल क्या है, रात के वक्त गाड़ी में से निकलते हैं, घर से निकलने के वक्त खूब बुरका पहना, खूब निकाब पहना, वो गाड़ी उतरी पीसी में, होटल में जहाँ शादी में गए, तो फौरन गाड़ी से निकलते पहले तो बाया खेंचा, बुरका उतारा, सारा लपेट के गले में दुपट्टा डाल के चले गए। फिर क्या हुआ, वहाँ 2-3 घंटे खूब माशाल्लाह शादी खाई पी, जब वापस आने चलो 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 किधर है, मर्द औरतों को जमा करो, वो बुरका नहीं मिल रहा, वो काली अंधेरे वाली गाड़ी में जहाँ गाड़ी में बाप भाई कुछ दूसरे ही अपने लोग हैं, फिर बुरका पहन के घर आया तो उतार दिया। इसको आप क्या कहेंगे, ये हमारा कल्चर है कि नहीं? कुछ लोग सिर्फ गाड़ी से पर्दा करते हैं, सड़कों से पर्दा करते हैं, क्या वो मर्द नहीं थे जो आपको वहाँ देख रहे थे? फुल एक्सपोजर में आप वहाँ बैठे हुए थे। फिर आप देख लीजिए कि जो मिक्स गैदरिंग्स होती हैं कि जहाँ चारों तरफ ही मर्द और औरतें, बिल्कुल इजाज़त ही नहीं है उसमें इस तरह से इख्तलात के साथ आपके बैठने की, करने की। अगर ज़रूरत है आप मौका देखिए उस पर करें, आगे इस पर इंशाल्लाह आगे जाके कहीं बात करेंगे, पीछे भी की थी, लेकिन ये बातें ऐसी हैं कि भूल जाती हैं ना बार बार। तो इस वक्त ख़ास तौर पे जो टॉपिक है हमारा वो घर के मर्द हैं, घरों में आए मर्द, लिमिट्स में रखिए। किसी सास को ये हक नहीं है कि अपनी बहू को ये कह के कि हाँ हाँ नहीं जी यहाँ सब शुरू से आते रहे, आते ही रहेंगे, नहीं, आप लिमिट्स कर रखिए। बड़ी चादरें ली जा सकती हैं घर में, घर में आप बुरके भी नहीं पहनेंगे, ये भी एक और हमारी बात है। मिसाल है, बाहर एक औरत अबाया पहनती है तो घर में भी क्या पूरा वक्त वो अबाया पहनेंगी? नहीं, घर के अंदर इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, आप बड़ी चादर लें, आमने सामने ना हो, बेतकल्लुफ ना हो, आप सास के साथ काम कर रहे हैं, करते रहें, चाहे एक की रोटी पकी, सबकी पकी, उसके बाद आप अपने मियाँ का खाना लेके कमरे में चले जाएं, आप मियाँ से बैठ के खा लें, देवर अपना लेके चले जाएं, कई चीज़ें पॉसिबल है। कोई मेहमान आते हैं आपके, अम्मी आप बैठिए उनके पास, मैं काम करती हूँ, यकीन करें आप एक दफ़ा दीनदार बहू बन के लोगों के दिलों में जाके देखें, वो दीन जो आपकी तकरीरों से नहीं आ सकता ना, वो आपके अमल से आएगा। लोग कहेंगे वाह, हम तो डरते ही थे, ये तो खौफ ही था। तो अगर सारे डॉक्टर जो हैं वो मरीजों को छोड़ के अलग चले जाएंगे तो इलाज कौन करेगा? तो कॉन्फिडेंस हो, तरीके से करें। और अगर आप समझते हैं आप इस काबिल नहीं, हर बंदे की शख्सियत में इतना प्रेशर लेना नहीं होता कि वो हर बंदे को फेस कर ले कि हाँ भाई सारे चल रहे हैं बेपर्द तो मैं चलती हूँ वहाँ निकाब में, चलो क्या होगा। हाँ आप जाइए, ज़रूर जाएँ अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, और अगर वहाँ किसी की बात सुन के आपने रोना शुरू कर दिया और बेहोश हो गया, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, तो फिर बेहतर है कि आप ना जाएँ। तो अल्लाह ताला ने ये सारी बातें करके हम सबको ये बता दिया कि तुम अपनी इज़्ज़तों की हिफाजत कैसे करो, अपनी असमत की हिफाजत कैसे करो। फिर इसमें आप देखिए कि मेरा ख्याल है कि सारी बातें थोड़ी बहुत हो गई हैं, घरों के ड्राइवर, घरों के जो काम करने कराने वाले लोग हैं उनके साथ भी लिमिट होनी चाहिए। बाज़ फैमिलीज़ जब अल्लाह का बहुत फजल होता है तो किचन में कुक भी काम कर रहे हैं, साथ सर्विंग भी मर्दों की है, कमरों में मर्द जा रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। बाज़ दफ़ा सफाई और घर की जो झाड़ पोंछ तक मर्द करते हैं, लिमिट्स रखिए। कोई बंदा आप ख़तरे में नहीं डालता, वही बात है कि आपका जेवर सिर्फ सेट पड़ा हो ना बाहर ड्रेसिंग टेबल पर, आप रात को पहने और ड्रेसर पे रख के सुबह भूल के आ गई तो आपको फिक्र लगती है, फोन करते नहीं, वो मैं जेवर बाहर रखा ही हूँ प्लीज उसको उठा लेना, काम वाले आएंगे। करते हैं ना लोग इस तरह से। कोई मर्द फोन कर सकते हैं, मेरा वॉलेट बाहर रह गया उसको संभाल लें, क्योंकि घर में मर्द फिरेंगे। तो बस वही जेवर और वॉलेट से ज्यादा कीमती बहू बेटियां होती हैं। बाज़ दफ़ा इसमें भी हमारे यहाँ हद से ज्यादा बड़ी भी बात है, जवान बेटियां अकेली ड्राइवरों के साथ जाती हैं, जो उन्होंने पहनना होता है जहाँ वो जाती हैं, अल्लाह की पनाह। पता नहीं वो मर्द कितना सब्र करते होंगे, कितना जब्त करते होंगे हमारी बहू बेटियों के हुलिया और उनके कपड़े देखकर। वो उनको पार्लर्स में भी लेके जाते, वहां से भी लाते, दर्जियों के चक्कर भी वो लगाते, ज्यूलर्स के पास भी वो जाते। तो कभी भी इस किस्म के रिस्क ना लीजिए कि जिससे दूसरे को भी आप गुनाहगार कर दें, क्योंकि आपका अपना ईमान नहीं बचेगा बल्कि दूसरों का ईमान जो है वो भी गलत तरफ चले पड़ेगा। फिर उसके बाद इसमें एक और छोटी सी भी बात कर दूं कजन्स की। घर के रिश्तों में जो हमारे यहाँ कजन्स की बेतकल्फ़ियाँ हैं वो भी बहुत ही मारूफ हैं। कज़न कल्चर, मेरा ख्याल है कि ये भी नाम से ही लग रहा है कि हमने कहाँ से लिया। कुछ ऐसे भी आज दुनिया के खत्ते हैं जहाँ दो ही रिश्ते हैं, एक अंकल आंटी और एक कजन्स, दैट्स इट। उनको नहीं पता फूफी की बेटी क्या, खाला की क्या, वो कज़न के नाम से आपको जानते हैं। तो कज़न्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा खराबियों के ख़तरे होते हैं। आग और पानी जब आप इकट्ठा रखते हैं तो उसमें नतीजा नुकसान का ही है ना। बाज़ दफ़ा एक फैमिली इकट्ठी रह रही होती है, जैसे अभी तस्करा हुआ, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, बड़े बहुत अच्छी तरह होते हैं, लेकिन उसी घर में सारे भाइयों के बच्चे पल रहे हैं, उसमें फिर कज़न्स के अंदर आके आप देखते हैं कि बहुत सारी खराबियाँ होती हैं, उसको भी ज़रा सा देखने की ज़रूरत है। और इस तरीके से फिर आप अपने आप को भी बचा सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं। फिर एक ये छोटी सी चीज़ थी, ये आपके सामने रख देती हूँ, वक्फ वज़ू फ़ुरूज हम में जो हमने पढ़ी कि अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, तो इसमें एड्स का तذکرہ करना मेरा ख्याल है कि गैर मुनासिब नहीं होगा कि आज शर्मगाह की हिफाजत जो नहीं हुई उसकी एक सूरत जो है वो एड्स की सूरत में दुनिया को मिलती है। एक रिपोर्ट आपसे शेयर करूंगी, दुनिया का कोई एक मुल्क ऐसा नहीं जिसमें ये मर्ज़ ना हो, यानी कुछ अमराज कहीं होते हैं कोई कुछ, एड्स ऐसा मर्ज़ है जो हर जगह मौजूद है। फिर इसी तरह जिना से रेलिवेंट एक रिवायत है, आपने फरमाया कि जानी जिना के वक्त मोमिन नहीं रहता, यानी खुदा न खास्ता अगर उस कैफियत में उसकी जान चली जाती है तो वो कुफर पे मौत होगी। फिर सही बुखारी और मुस्लिम की एक रिवायत है जो वाकई बहुत ही ज़्यादा तवज्जो दिलाने वाली है। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि जहन्नमियों के दो गिरोह ऐसे हैं कि जिनको मैंने नहीं देखा, यानी मीन के उस दौर में ये दोनों किस्में भी नहीं थी, लेकिन क़यामत से पहले ये दोनों चीज़ें दुनिया में आम होंगी। उनमें से एक वो हैं कि जिनके हाथों में बैलों की दुमों के जैसे कोड़े हैं, आपका इशारा था जालिम हुक्मरानों की तरफ कि जो हुकूमत करेंगे और लोगों पर जुल्म करेंगे, और दूसरा आपने फरमाया कि ऐसी औरतें कि जो लिबास पहनने के बावजूद बरहना होंगी और उनके सर बुख्ती ऊनियों की तरह ऊंचे होंगे, यानी हेयर स्टाइल की तरफ इशारा। ये रिवायत आपको इंशाल्लाह ताला कोट करूंगी कहीं पूरी रिवायत के साथ, तो आप इस पे भी गौर कर सकते हैं कि आज का कल्चर कौन सा कल्चर है। फिर आप देखिए ये जो पाँव के चलने की बात थी ना, अर्जुली हिन्ना, तो ये रिजलुन की जमा अर्जुल आती है। इसमें एक तो पाँव का जेवर है जो हम बात कर चुके पीछे, फिर चाल के जेवर की अब साथ साथ इसके अंदर खास चाल के स्टाइल पे भी बात है, डांसिंग, टैप डांसिंग जो भी होती है। बस लोग जो होते हैं ना वो खुशबू के साथ तो अपना एहसास देते ही हैं, कुछ लड़कियां खास तौर पे मैंने देखा है कि आवाज़ों के ज़रिए से ही अपनी तरफ तवज्जो माइल करती हैं। आप देखें कि ये चीज़ हम ख़वातीन को भी देखनी चाहिए। जैसे आप इस क्लासरूम में बैठे ना, आप जितनी मर्ज़ी बात करें, फारिग हैं, ब्रेक में खाएं पिए, जब आप इस क्लासरूम से बाहर जाएं और आप कहते हैं कि बाहर रोड है और आगे गुजरेंगे तो बाजार है, बाहर जाते हुए कभी भी ऊंची आवाज़ में बात ना करें। आप इमेजिनेशन में रखें कि बाज़ दफ़ा आप बैठे थे तो एकदम ऊंची आवाज़ें आती हैं, आप देखते हैं तो चंद औरतें आ रही होती हैं और ऊंची आवाज़ से बातें कर रही हैं, मर्द देखेंगे तो ये भी तो एक कॉल होगी ना। बेटी और बेटे के सास ससुर आपके महरम नहीं हैं, लिहाजा समझाने के नाम पे आप अब उनके साथ ताल्लुकात को लिमिट्स में रखेंगे। बाज़ रिश्तों में तो हम कहते हैं ये तो है ही नहीं को बात करने वाली, ये मेरी बेटी का ससुर है, आपका तो नहीं है ना। अपना ससुर तो इसमें आता है लेकिन बेटी का ससुर इसमें नहीं आता। फिर इसी तरह आप देखिए कि बस दफ़ा लोग इतने बारीक कपड़े पहनते हैं, जैसे गर्मियों में लॉन और वॉयल के कपड़े, सफ़ेद शलवारों का जब रिवाज चला था अल्लाह की पनाह, और उसमें भी जब चिकन के इतने बड़े बड़े छेद हों तो उससे भी आप सोच सकते हैं कि फिर कितनी बेहयाई जो है वो फैलती है। ये जो जीनत की बात है इसमें एक बड़ा अहम मौजू है जो औरतों को शायद फ़ायदा मंद होगा, कि जब हम खूबसूरती के लिए किस हद तक कर सकते हैं अपने आप को आराइश, यानी जेवर पहन सकते हैं, पहन सकते हैं, अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, पहन सकते हैं, मेकअप कर सकते हैं, कर सकते हैं। उसके बारे में हमने रिवायत पढ़ ली कि जिसका रंग खुला हो लेकिन खुशबू दबी हो, क्योंकि कॉस्मेटिक्स में कुछ ना कुछ खुशबू तो होती है, इस ओके। लेकिन अगर ऐसी खुशबू हो कि जो आते ही बिल्कुल यानी दूर से दिखे, वो नहीं करनी चाहिए। फिर इसी तरह इसके अंदर एक जो सवाल आता है अक्सर औरतों की तरफ से, वो थ्रेडिंग का है, वैक्सिंग या थ्रेडिंग, इसके बारे में क्या हुक्म है। हम इस पे वैसे तो बात कर चुके हैं सूरत निसा में, लेकिन चूंकि यहाँ जीनत की बात थी तो मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा टच कर रही हूँ कि भवों की प्लकिंग, इसके बारे में तो सरीहन मना है। देखिए कि औरत के जिस्म पे जो बाल होते हैं ना, ये बुनियादी तौर पे उसके औरत बने के खिलाफ हैं। एक बात समझ लीजिए कि औरत को अल्लाह ताला ने जो नरम और डेलिकेट बनाया है, मर्द को सख्त बनाया है। औरत के जिस्म पे आपको सर के बालों के सिवा जहाँ भी बाल दिखेंगे, पलकों और बालों के सिवा, ये गैर फितरी बाल होते हैं, ये नहीं होने चाहिए। अब इस सूरत में करें क्या, इसके अंदर दो मुख्तलिफ आप एंगल देख सकते हैं। एक ये है कि जिनके लिए सरीहन हुक्म है कि नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें कहा गया कर सकते हैं, और कुछ चीज़ें बीच में हैं। इसको हम देख लेते हैं। तीन चीज़ें हमारे सामने आती हैं बालों के हिसाब से जीनत में। सबसे पहले बाल काटना, क्या औरत बाल कटवा सकती है जीनत के लिए? इसके बारे में जो बहुत सारे तजादात के साथ रवैये सामने आते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी बात कहूँगी पूरे दलाल से कहूँगी कि सरासर जो हमारे यहाँ एक तसव्वुर है कि कैंची लगाना ही गुनाह है, और बाज़ लोग तो कहते हैं मरेगी औरत तो उसके कफन में कैंची रखनी पड़ेगी, लोहा लग गया ये वाह, ये बिल्कुल अबस बात है। बजाते खुद बाल कटवाना या काटना गुना नहीं है। ऑफकोर्स अगर वो किसी गैर महरम से कटाएगी वो तो और बात है, वो पर्दे के साथ उसको ले जाएं तो और बात है, लेकिन औरत बाल कटवा सकती है, कोई हरज की बात नहीं, ये भी उसकी जीनत है। लेकिन शरायत है। पहली शर्त उसमें क्या है कि औरत मर्दों से मुशाबहत ना करे। मसलन जिसको हमारे यहाँ एक मारूफ कहते हैं बॉयकॉट, आज तो पता नहीं कौन कौन से कट आ चुके होंगे, लेकिन मर्दों की मुशाबहत ना हो, यानी औरत बिल्कुल अपने बाल ऐसे ही ना कर ले कि देखने में एकदम लगे कि कोई मर्द आ गया, ये नहीं कर सकते। दूसरी शर्त क्या है कि गैर मुस्लिम औरतों की मुशाबहत ना हो, कि ऐसा सहर ना मुबतला हो कि डियाना कट है और फलां कट है और फलां कट है। इसके अलावा आप बाल काटना चाहें कटवा लें, पर्दे में रहें, अलग बात है। अब लोग कहते हैं बाल कटे हैं तो फिर दिखाना भी पड़ते हैं, तो फिर आगे बात चली गई ना, आप तावील नहीं कर सकते। आप काटते हैं, आपके शौहर को पसंद है बाल, आप कटवा लें। आपको बाल संभालने मुश्किल लगते हैं, आप छोटे कर लें, पीछे पकड़ें, ट्रिम कर लें, कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन बहरहाल ये शरायत पूरी करेंगे। दूसरी चीज़ आ जाती है आईब्रोज के बाल हैं। इसके बारे में सरासर वाज़े हुक्म है, हदीस आपको पीछे कोट करा दी थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और इब्ने मसूद के नाते से रिवायत पहुंचती है कि अल्लाह ताला ने ऐसी औरतों पर लानत की है कि जो अपनी भवों के बाल मूंढती हैं, जिसमें तीन और काम है, जिसमें दांतों को खुला कर देना। अरब लोगों में दो दांतों के बीच में गैप का रिवाज था, आज भी होता है, पसंद करते हैं कुछ लोग, तो वो औरतें रेती के साथ घिसवाती थी, यानी दांतों को ट्रिम कराना, सेट करते रहना। पता नहीं इतने गौर से देखता कौन है अपने आप को, यहाँ से लंबा है, यहाँ से छोटा है, इसको घिसाएं, बाज नाक की हड्डी कटवा रहे होते हैं। तो इस सूरत में आप देखिए कि भवों के बालों के लिए, और उसी में नकली बालों का बालों में लगाना, जिसको मोपिट्स कहते हैं, जूड़ा कहते हैं, आप अपने बालों में परंदा डालते हैं डाल लीजिए, कोई हर्ज की बात नहीं है, आप उसमें रिबन डालते हैं डाल लें, लेकिन जहाँ भी एक बस छोटा सा असूल याद कर लें कि जहाँ असल पे नकल का धोखा हो वो मना है। मेकअप करें जितना मर्जी, सबको पता है, ये अलग बात है कोई औरत फुल मेकअप में भी होती थी, अल्लाह उनकी बख्शिश करे, बहरहाल वो कहती थी नहीं ये मुझे कुदरती हुसन है, वो रंग बिरंगा हुसन पता नहीं कैसे था, लेकिन पता चलता है, हर बंदे को पता चलता है उसने मेकअप किया कि नहीं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अब अगर आप लेंजेस लगाते हैं और ये शो करते हैं कि मेरे ब्लू लेंजेज हैं, मेरी तो माँ की भी आंखें ब्लू थी, नानी की भी ब्लू थी, धोखा करके आपने रिश्ता करवा लिया, लड़का कहता है मुझे तो नीली आंखें चाहिए थी, वो शादी के दिन सुबह पता चला वो तो लेंस थे, झगड़ा होगा ना, तो धोखा ना हो। बाल काले करने का क्या हुक्म है? काले करेंगे तो आप जवान लगेंगे, पहली बात है, चेहरे की झुर्रियाँ फिर भी बता देंगी, गर्दन बता देगी, अब जवान नहीं है, शर्मिंदगी होगी बाद में, लोग आपको जवान समझ के आपकी खिदमत ही नहीं करेंगे। पहले बच्चे माँ बाप से इसलिए भी उनकी खिदमत करते थे कि माँ बाप बूढ़े लगते थे, अब तो माएँ जवान लगती हैं, उन्होंने काली मेहंदी लगाई, इतने पार्लर्स में मेहनत की, फेशियल करा, वो कहते हैं कौन कहता है हमारी माँ बूढ़ी है, ये तो अभी भी जवान है, तो अब खिदमत नहीं हुई। फिर इसके बाद दूसरी बात है कि लोग आपके ज़ाहरी हाल हुलिये से आपको जवान समझेंगे, अंदर तो ताकत नहीं है ना, तो अंदर की झुर्रियाँ तो ख़त्म नहीं होती। लेकिन अगर आप आराइश के लिए बालों को रंगना चाहें, बस डाई कर लेते हैं गोल्डन कलर, कुछ भी करें, आपका जो दिल चाहता करें, लेकिन नीले पीले ना करें कि आप चिड़िया तोती लगने लगे। नेचुरल आप नेल पॉलिश लगाते हैं ना, आप रेड लगा लें, आप लगा लें जो नेचुरल कलर है, नेचुरल रखें, अपने आप को मेकअप के अंदर भी एक ऐसी हद में इस्तेमाल करना चाहिए कि इंसान इंसान लगे, किसी हद तक जो भी करना चाहे करें, लेकिन जहां जो मना है वो काले रंग का खिजाब मना है, क्योंकि उससे उम्र छुपती है। उसकी जगह पसंदीदा चीज़ मेहंदी है, सुर्ख मेहंदी लगा लें अगर कोई लगाता है, क्योंकि दूसरी लगाएंगे तो आपको पता है कि उसमें शायद फिर दोबारा ही उगने लगते हैं, जो मैंने सुना है कि फ़ौरन ही उसके बाद बाकी बाल भी गालिबन सफ़ेद हो जाते हैं। लेकिन जब आप एक बामकसद ज़िंदगी करते हैं ना बसर, तो आपके पास इतना वक्त नहीं है।